कला कला के लिए। सूक्ष्म सत्ता परमात्मा के विभिन्न दार्शनिकों ने मुख्यतः तीन लक्षण स्वीकार किए हैं, सत, चित और आनंद। मनुष्य उसी सूक्ष्म सत्ता का व्यक्त रूप माना गया है। मनुष्य का भी सूक्ष्म जीवन तीन बातों पर आधारित रहता है, ज्ञान, भावना और क्रिया। इसमें ज्ञान का संबंध सत से है, क्रिया का चित्त से और भावना का आनंद से। अतः परमात्मा के अनुरूप ही मानव जीवन में इन तीनों तत्वों की प्रमुखता है। आधुनिक युग के मनोवैज्ञानिक भी मानव जीवन में उपयुक्त तीनों प्रवृत्तियों, ज्ञान, क्रिया और भावना, टू नो, टू विल, टू फील की ही प्रमुखता स्वीकार करते हैं। मानव जीवन से संबंधित विभिन्न विषय इन्हीं तीनों प्रवृत्तियों से प्रेरित हैं। ज्ञान की प्रवृत्ति ने विज्ञान और दर्शन को, क्रिया की प्रवृत्ति ने धर्म और व्यवसाय को, और भावना की प्रवृत्ति ने साहित्य और कला को जन्म दिया। यद्यपि विज्ञान, व्यवसाय और कला तीनों का संबंध मानव जीवन से है, फिर भी तीनों के लक्ष्य में परस्पर गहरा अंतर सिद्ध होता है। जहाँ विज्ञान का लक्ष्य सत्यम है, व्यवसाय का शिवम, वहाँ कला का सुंदरम है। इनमें से यदि कोई भी विषय अपने लक्ष्य को भूलकर अन्यत्र दृष्टिपात करने लगेगा तो उससे वह तो पथ भ्रष्ट हो ही जाएगा, साथ ही जीवन में भी विकृति उत्पन्न करेगा। यदि एक वैज्ञानिक किसी सुंदर पुष्प के टुकड़े टुकड़े करके उनके मूल तत्वों की जानकारी प्राप्त करने के स्थान पर यदि वह उसके सौंदर्य से अभिभूत होकर कविता लिखने लग जाए तो वह वैज्ञानिक न रहकर कवि बन जाएगा। इसी प्रकार एक शिवम का रक्षक न्यायाधीश यदि किसी अभियुक्ता बालक के अधिकारों को भूलकर उसके सौंदर्य पर मुग्ध होने लगेगा तो वह भी अपने कर्तव्य पथ से भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सौंदर्य साधना में रत कलाकार जब अपने मूल लक्ष्य को भूलकर सत्यम और शिवम की ओर आकर्षित होने लगेगा तो वह अपनी कला को कला के स्थान पर दर्शन या नीति शास्त्र का रूप दे देगा। अस्तु, जीवन की सफलता इसी में है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य और क्षेत्र को ही प्रमुखता दे। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उससे उसका महत्व तो नष्ट हो ही जाएगा, संसार में भी बड़ी अव्यवस्था और विकृति आ जाएगी। जल का गुण शीतलता है और अग्नि का उष्णता। उनका धर्म इसी बात में है कि दोनों अपने अपने गुणों को बनाए रखें। किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि संसार के अनेक विद्वान जो एकांगी दृष्टिकोण से ही सभी वस्तुओं को देखने के अभ्यस्त हैं, एक वस्तु का गुण दूसरी वस्तु में ढूंढने का प्रयास करते हैं। उसी दृष्टिकोण का परिणाम है कि साहित्य और कला में विज्ञान, दर्शन और नीति शास्त्र के तत्वों की आशा की जाती है। विभिन्न विद्वानों के विचार से जीवन में केवल सौंदर्य से काम नहीं चल सकता, उपयोगिता के दृष्टि से भी सौंदर्य का विशेष महत्व नहीं है। अतः वे चाहते हैं कि कला के सौंदर्य के साथ साथ कुछ ऐसी उपयोगी बातों या नैतिकता को भी की भी शिक्षा दें जिससे कि जीवन की उन्नति हो। इसी दृष्टिकोण के समर्थन और विरोध को लेकर विचारकों के दो पक्ष हो गए हैं, एक उनका जो कला का चरम लक्ष्य सौंदर्य मानते हैं। इनका नारा है उद्धरण चिन्ह, कला कला के लिए, उद्धरण चिन्ह बंद, और दूसरा उनका जो कला को चरम लक्ष्य नैतिकता की शिक्षा देना मानते हैं और कहते हैं को उद्धरण चिन्ह, कला जीवन के लिए, उद्धरण चिन्ह बंद। अतः इन दोनों पक्षों के विचारों के अध्ययन के अनंतर ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। कला जीवन के लिए, सुश्री महादेवी वर्मा ने जीवन तथा कला में आदर्श का महत्व बताते हुए लिखा है, उद्धरण चिन्ह, आदर्श हमारे दृष्टि की मलिन संकीर्णता धोकर उसे बिखरे यथार्थ के भीतर छिपे हुए सामंजस्य को देखने की शक्ति देता है। हमारी बेष्टि में सीमित चेतना को मुक्ति के पंख देकर समष्टि तक पहुंचाने की दिशा देता है और हमारी खंडित भावना को अखंड जागृति देकर उसे जीवन की विविधता नाप लेने का वरदान देता है। जब आदर्श जल भरे बादल की तरह आकाश का असीम विस्तार लेकर पृथ्वी के असंख्य रंगों, अनंत रूपों में नहीं उतर सकता, तब शरद के सूने मेघ खंड के समान शून्य का धब्बा बना रहना ही उसका लक्ष्य हो जाता है, उदाहरण चिन्ह बंद। विज्ञान, दर्शन एवं साहित्य के क्षेत्र में आदर्शवाद शब्द का प्रयोग विभिन्न विशिष्ट धारणाओं एवं मान्यताओं के अर्थ में किया जाता है। दर्शन के क्षेत्र में आदर्शवाद भौतिकवाद का विरोधी है, उदाहरण चिन्ह, भौतिकवादी भौतिक द्रव्य को सत्य मानता है और मन अथवा चेतना को उसका उपजात एवं अनुगामी। इसके ठीक विपरीत दार्शनिक आदर्शवादी मन अथवा चेतना को परम सत्य एवं परम तत्व और भौतिक द्रव्य को उससे उद्भूत मानता है। उसकी मान्यता यह है कि परम तत्व मन जैसा चेतन है। हिंदी साहित्य कोश पृष्ठ 95। इस प्रकार दर्शन के क्षेत्र में आदर्शवाद को अध्यात्म का पर्यायवाची कहा जा सकता है, किंतु देश और काल के भेद से इसके स्वरूप में परस्पर थोड़ी बहुत विभिन्नता भी सदा रही है। सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में भी विचारकों का एक ऐसा समूह रहा है जो आदर्शवादी कहा जा सकता है। इस वर्ग में भी वे चिंतक आते हैं जो वस्तु की सौंदर्य उसके भौतिक तत्वों में न मानकर या तो उसकी उपयोगिता में मानते हैं अथवा दृष्टा की दृष्टि में मानते हैं। सुकरात, प्लेटो, हर्बर्ट, रिचर्ड्स आदि विचारक इसी श्रेणी में आते हैं। सुकरात ने उपयोगिता को ही सौंदर्य का पर्यायवाची मानते हुए एक स्थान पर लिखा था, अजंग बास्केट If it answers, its end may be a beautiful thing, while a golden shield not well for use is ugly thing. अर्थात, एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है, यदि वह अपना कोई उपयोग रखती है, जबकि चमचमाती हुई स्वर्ण घटित ढाल भी असुंदर है, यदि वह उपयोग की दृष्टि से अपूर्ण है। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने प्रत्यक्ष संसार की किसी प्रत्यक्ष जगत की प्रतिछाया घोषित करते हुए समस्त सौंदर्य को किसी एक अलौकिक शक्ति से संबंधित माना है। हमारी आत्मा सौंदर्य की खोज में भटकती रहती है, किंतु सौंदर्य के सच्चे स्वरूप का आस्वादन करना कोई सरल कार्य नहीं। उसके विचारानुसार विभिन्न शास्त्रों के गंभीर अध्ययन एवं मनन से विकसित एक विशेष प्रकार की मानसिक शक्ति से ही हम सौंदर्य बोध कर सकते हैं। यद्यपि सौंदर्य बोध की यह अपूर्व क्षमता तर्कबद्ध अध्ययन से ही उदित होती है, फिर भी वह तर्क से शून्य होती है। सौंदर्य तर्क गम्य नहीं, अनुभूति गम्य है। आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों में आई ए रिचर्ड्स ने भी सौंदर्य की व्याख्या आदर्शवादी दृष्टिकोण से करते हुए कहा कि हमारी भावात्मक संतुष्टि का नाम ही सौंदर्य है। किसी वस्तु को देखकर जब हमारी भावनाओं में एकाग्रता या तन्मयता आ जाती है तो हम तृप्ति का अनुभव करते हैं और हम उस वस्तु को भूल से सुंदर कह बैठते हैं, जबकि वास्तव में सौंदर्य हमारी इस मानसिक तृप्ति की देन है। इस प्रकार आदर्शवादी दार्शनिकों की ही भांति आदर्शवादी सौंदर्य शास्त्रियों ने भी भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता को, स्थूलता की अपेक्षा सूक्ष्मता को और यथार्थ की अपेक्षा कल्पना को अधिक महत्व दिया है। साहित्य के क्षेत्र में आदर्शवाद का प्रयोग किसी एक वर्ग या एक काव्यधारा के लिए नहीं होता, जैसा कि कुछ अन्य वादों के संबंध में होता है, अपितु व्यापक रूप में उसका प्रयोग एक विशिष्ट दृष्टिकोण के लिए होता है। वस्तुतः इसका प्रयोग यथार्थवाद के विरोध में किया जाता है। काव्य में विषय वस्तु का चित्रण वास्तविक रूप में करना यथार्थवाद कहलाता है, जबकि उसे वास्तविक से ऊपर उठाकर प्रस्तुत करना आदर्शवाद है। यथार्थवाद जहाँ क्या है का उत्तर देता है, वहाँ आदर्शवाद यह बतलाता है कि क्या होना चाहिए। यथार्थवादी मनुष्य की दुर्बलताओं का चित्रण करके उसके पतन को चित्रित करता है, जबकि आदर्शवादी उसकी उदात्त प्रवृत्तियों को उभार करके उसे उत्थान की ओर अग्रसर करता है। यथार्थवादी समाज की समस्याओं को नग्न रूप से प्रस्तुत करके ही चुप हो जाता है, जबकि आदर्शवादी उनका समाधान भी करने का प्रयत्न करता है। यथार्थवादी ईश्वर, पाप पुण्य, भाग्य एवं पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करता, जबकि आदर्शवादी इन सब में विश्वास करता है। यथार्थवादी की दृष्टि धरती पर रहती है, जबकि आदर्शवादी आसमान की ओर ताकता है। यथार्थवादी को केवल वर्तमान से प्रेम होता है, जबकि आदर्शवादी अतीत के गौरव और भविष्य की कल्पनाओं में डूबा रहता है। यथार्थवादी काव्य की रचना का अंत प्रायः निराशा, वेदना, पराजय एवं दुख में होता है, जबकि आदर्शवादी के काव्य में नए जीवन की मधुर सपनों, भावी सफलता की आशाओं, पाप पर पुण्य की विजय का चित्रण होता है। प्रश्न है, ऐसे सुंदर, मधुर, दिव्य एवं अलौकिक आदर्शवाद में कौन सा दोष है जिससे सभी कलाकार या सभी पाठक इसे पसंद नहीं कर पाते। इसका सीधा सा कारण यह है कि वह कल्पना के गगन में उड़ान भरता है, जबकि हमारा वास्तविक जीवन यथार्थ की ठोस भूमि पर आधारित है। वह हमें कला का आश्वासन देता है जबकि हम आज की पीड़ा से घायल हो रहे हैं। वह हमारी रोटी की आवश्यकता के उत्तर में संगीत की मीठी रागनी सुनाता है। आदर्शवाद की अति सूक्ष्मता, अति काल्पनिकता और अलौकिकता से ही ऊबकर लोग यथार्थवाद की शरण लेते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि जब आदर्शवाद इतना बुरा है तो इसमें कौन से गुण हैं जिससे कुछ लोग इसका समर्थन करना उचित समझते हैं। इसका उत्तर यही है कि यथार्थवाद हमारा शरीर है तो आदर्शवाद हमारी आत्मा है। यदि हमारे जीवन के लिए रोटी, कपड़े और मकान की आवश्यकता सर्वप्रमुख है तो मीठी कल्पनाओं, मधुर सपनों एवं उच्च आदर्शों के बिना भी जीवन नहीं रह सकता। संसार की वाटिका में यदि हम यथार्थ के कांटों को ही देखते रहें तो भय है कि कहीं हम निराश होकर आत्महत्या ही न कर लें। अतः उसके आदर्श के फूलों को भी देखना नितांत आवश्यक है। अतः जीवन और साहित्य दोनों में यथार्थ और आदर्श का उचित संतुलन आवश्यक है, जैसा कि श्रीमती महादेवी वर्मा ने लिखा है। उद्धरण चिन्ह: आदर्श जीवन के निरपेक्ष सत्य का बालक है और यथार्थ जीवन की सापेक्ष सीमा का जनक। अतः उनकी अन्योन्याश्रित स्थिति ने ऊपर से कभी प्रकट हो सकती है और न भीतर से कभी मिट सकती है। उनकी गति विपरीत दिशोन्मुख होकर भी जीवन की परिधि को दो और से स्पर्श करने का एक लक्ष्य रखती है। उदाहरण चिन्ह बंद। कला कला के लिए: कला का उद्देश्य विशुद्ध कला या सौंदर्य को मानने वाले विद्वान में क्रोचे, ऑस्कर वाइल्ड, पीटर जे ई स्पिनगार्न आदि प्रमुख हैं। क्रोचे का मत अभिव्यंजनावाद के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने आत्मा की दो प्रवृत्तियां मानी है, एक विचारात्मक या सैद्धांतिक थियोरेटिक और दूसरी व्यवहारिक प्रैक्टिकल। इस विचारात्मक या सैद्धांतिक प्रवृत्ति के भी दो उपभेद हैं, एक स्वानुभूति से प्रेरित इंट्यूशन और दूसरी तर्क की क्रिया लॉजिक से उत्पन्न। व्यवहारिक प्रवृत्तियों के भी क्रोचे ने दो भेद किए हैं, आर्थिक और नैतिक। इस प्रकार से ये चार प्रवृत्तियां निश्चित हुई। पहला स्वानुभूति से प्रेरित इंट्यूशन, दूसरा तर्क की क्रिया से उत्पन्न लॉजिक, तीसरा आर्थिक इकोनॉमिक और चौथा नैतिक एथिकल। कला का संबंध इनमें से प्रथम प्रवृत्ति स्वानुभूति से ही है। अतः शेष प्रवृत्तियां जिनमें नैतिक प्रवृत्तियां भी सम्मिलित हैं कला से असंबंध है। कला सृष्टि की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है, जब कोई भी कलाकार स्वानुभूति को सहज स्वाभाविक रूप में अभिव्यक्त कर देता है तो वही कला का रूप धारण कर लेती है। अतः अभिव्यक्ति की पूर्णता ही कला की पूर्णता है, अभिव्यक्ति ही उसका सौंदर्य है। इस प्रकार क्रोचे विभिन्न प्रवृत्तियों के वर्गीकरण के द्वारा कला के क्षेत्र नैतिकता से भिन्न मानता है। यदि कलाकार अनैतिक तत्वों की अभिव्यंजना करता है तो यह दोष स्वयं कलाकार का नहीं है अपितु उस समाज का है जिसके वातावरण के प्रभाव से उसने ऐसी अनुभूति ग्रहण की। अतः जो आलोचक कला में नैतिकता देखना चाहते हैं वे पहले समाज के वातावरण में नैतिकता को प्रतिष्ठित करें। श्री ऑस्कर वाइल्ड और स्पिनगार्न महोदय ने भी कला का क्षेत्र नैतिकता से भिन्न मानते हुए कला कला के लिए का समर्थन किया है। ऑस्कर वाइल्ड ने स्पष्ट रूप से घोषित किया है, उद्धरण चिन्ह: समालोचना में सबसे पहली बात यह है कि समालोचक को यह परख हो कि कला और आचार के क्षेत्र पृथक पृथक हैं, उद्धरण चिन्ह बंद। जे ई स्पिनगार्न के शब्दों में, उद्धरण चिन्ह: शुद्ध काव्य के भीतर सदाचार या दुराचार ढूंढना ऐसा ही जैसा कि रेखा गणित के सम त्रिकोण त्रिभुज को सदाचार पूर्ण कहना और समद्विबाहु त्रिभुज को दुराचार पूर्ण, उद्धरण चिन्ह बंद। श्री बेडले महोदय ने भी कला कला के लिए मत का समर्थन करते हुए कहा है कि कला को सौंदर्य के मापदंड से ही नापना चाहिए। हाँ, अनैतिक पूर्ण रचनाओं को नागरिकों की दृष्टि से प्रकाशित न भी किया जाए तो कोई बात नहीं। ब्रैडले ने बताया है कि रेसिटी ने अपनी एक कविता को, जिसे मर्यादावादी टेनिसन ने भी पसंद किया था, लोक मर्यादा के भय से प्रकाश में नहीं आने दिया। इस संबंध में ब्रैडले महोदय का कहना था कि उसका यह निर्णय नागरिक की दृष्टि से था, कलाकार की हैसियत से नहीं। आधुनिक मनोविश्लेषकों में भी अनेक ने कलावाद का समर्थन किया है। फ्रायड ने काव्य को अतृप्त वासनाओं की अभिव्यक्ति माना है। ऐसी स्थिति में काव्य में कामुकता और अश्लीलता का आ जाना स्वाभाविक है। इस धारणा से साहित्यकारों को नग्न दृश्यों की चित्रण की छूट मिल गई। वे कला के आवरण में अपने कुत्सित मन की गंदगी को प्रस्तुत करने लगे हैं। यदि क्रूची ने स्वाभाविक अभिव्यक्ति को काव्य का लक्ष्य माना था, तो फ्रायडवादी अश्लील अभिव्यक्ति को ही अपना साध्य माने लगे हैं। वस्तुतः क्रूची, स्पिनगार्न, ब्रेडली, फ्रायड आदि सभी कलावाद के समर्थकों के विचार अतिवादी हैं। सर्वप्रथम क्रूची ने अभिव्यक्ति को ही सौंदर्य मानकर एक बड़ी भारी भ्रांति का प्रचार किया। प्रत्येक व्यक्ति में थोड़ी बहुत अनुभूति की मात्रा तो होती ही है और वह किसी न किसी रूप में उसे अभिव्यक्त भी करता है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक के भावाभिव्यक्ति काव्य का रूप धारण नहीं करती। जब दो व्यक्ति परस्पर झगड़ते हैं तो उनकी उक्तियों में क्रोध की सफल अभिव्यक्ति होती है, पर क्या उसे हम काव्य की संज्ञा दे सकते हैं? अभिव्यक्ति काव्य का साधन है, साध्य नहीं। दूसरे व्यक्ति का चरित्र भी उसकी विकसित भावनाओं पर आधारित होता है, अतः चारित्रिक वृत्तियों, नैतिकता आदि का हमारी भावनाओं से गहरा संबंध होता है तथा काव्य की भी मूलाधार भावनाएं होती हैं। इस दृष्टि से नैतिकता और काव्यात्मकता दोनों की प्रेरणा स्रोत एक ही है, अतः कला को नैतिकता से सर्वथा पृथक मानना उचित नहीं। यह ठीक है कि कला का सर्वोपरि गुण उसका सौंदर्य है, किंतु यह सौंदर्य यदि नैतिकता से शून्य होगा तो उसके प्रभाव में न्यूनता आएगी। स्वयं सौंदर्य को सौंदर्य बनाए रखने के लिए भी नैतिकता की प्रधान रूप में न सही गौण रूप में आवश्यकता है। जैसा कि हमने प्रारंभ में प्रतिपादित किया था कि सौंदर्य का लक्ष्य हमारे जीवन में आनंद की प्रतिष्ठा करना है, किंतु जो तत्व ऐसा करने में असमर्थ न हो उसे सौंदर्य की उपाधि से कैसे विभूषित कर सकते हैं? महात्मा टॉलस्टॉय ने भी कला का मानदंड नैतिकता को सिद्ध करते हुए लिखा है, उदाहरण चिन्ह, इन एवरी एज एंड इन एवरी ह्यूमन सोसाइटी देयर एक्सिस्ट अ रिलीजियस सेंस ऑफ व्हाट इज गुड एंड व्हाट बैड कॉमन टू द होल सोसाइटी एंड इट इज दिस रिलीजियस कॉन्सेप्शन द डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ द फीलिंग्स ट्रांसमिटेड बाय आर्ट। प्रतीक युग में तथा प्रत्येक समाज में कुछ सामान्य धार्मिक एवं नैतिक धारणाएं प्रचलित रहती हैं और इन्हीं के आधार पर किसी भी कला द्वारा प्रतिपादित भावनाओं का मूल निर्धारण किया जाता है। उदाहरण चिन्ह बंद। आधुनिक युगीन पाश्चात्य विद्वानों में रस्किन ने कला में नैतिकता का समर्थन दृढ़ता पूर्वक किया। रस्किन महोदय ने सौंदर्य का संबंध आध्यात्मिकता से स्थापित करते हुए बताया है कि हमारी सौंदर्यानुभूति हमारे इंद्रियों या हमारी मानसिक शक्तियों पर आधारित नहीं है, अपितु उसका संबंध हमारी आस्तिक भावनाओं से है। साथ ही उसका यह भी विश्वास है कि सचरित व्यक्ति ही उच्च कोटि की कला का सृजन और आस्वादन कर सकता है। इसी प्रकार मैथ्यू अर्नोल्ड, रिचर्ड्स आदि विद्वानों ने भी नैतिकता का समर्थन किया है। जहाँ कलावादियों ने सौंदर्य को इतना अधिक महत्व दिया कि उससे नैतिकता अस्वस्थ हो जाती है, तो नैतिकता को इतना बढ़ावा भी दिया कि उससे सौंदर्य का दम घुट जाता है। भारतीय दृष्टिकोण। हमारे प्राचीन आचार्यों ने इस संबंध में एक संतुलित दृष्टिकोण का परिचय दिया है। रस सिद्धांत के अनुसार कला का लक्ष्य सामाजिक को रसानुभूति या आनंद प्रदान करना है। स्थूल दृष्टि से रस सिद्धांत पाश्चात्य कलाविद के निकट प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों ही कलाओं का लक्ष्य सौंदर्य या आनंदानुभूति स्वीकार किया गया है, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर दोनों में गहरा अंतर्दृष्टि गोचर होगा। पाश्चात्य कलावाद में जहां स्वयं रचयिता का आनंद ही साध्य है, वहां रस सिद्धांत में सामाजिक या पाठक का। इस स्थिति में कला समाज विरोधी रूप धारण नहीं कर सकती। यदि कला नैतिकता का विरोध करेगी तो वह सामाजिक के हृदय को प्रभावित करने में असमर्थ सिद्ध होगी। यही कारण है कि हमारे यहाँ कवियों की उच्च श्रृंखल प्रवृत्तियों पर अंकुश के लिए रसाभास जैसे विशेषणों का आविष्कार किया गया है। रस सिद्धांत के अतिरिक्त अन्य संप्रदायों के आचार्यों ने भी कला का मानदंड तो सौंदर्य को ही रखा है, किंतु वे उसका लक्ष्य सामाजिक की तृप्ति ही मानते हैं। अस्तु, भारतीय काव्यशास्त्र के क्षेत्र में कला स्वतंत्र रहती हुई भी नैतिकता के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करती रही है, अतः दोनों में कोई विरोध नहीं मिलता। हाँ, जब जब समाज के दृष्टिकोण में भी नैतिकता संबंधी मान्यताओं में परिवर्तन हुआ तो उसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। नायिका भेद के अंतर्गत परकिया को भी स्थान दिया जाना इसी तत्व का द्योतक है। आधुनिक भारतीय विद्वानों के दृष्टिकोण में अवश्य पाश्चात्य प्रभाव के कारण थोड़ी अतिवादिता आ गई है। जहां आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी कला का चरम लक्ष्य मानव जाति का हित साधन करना मानते हैं, वहां इलाचंद्र जोशी कला में नीति को ढूंढना पाप समझते हैं। उनके शब्दों में उद्धरण चिन्ह, उच्च अंग की कला के भीतर किसी तत्व की खोज करना सौंदर्य देवी के मंदिर को कलुषित करना है। उद्धरण चिन्ह बंद। यदि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की ओर लिखते हैं, मैथिली शरण गुप्त एक ओर लिखते हैं, मान उद्धरण चिन्ह, मानते हैं जो कला को कला के लिए अर्थी स्वार्थनी करते कला को व्यर्थ हैं। इसे फिर से सुन लें। यदि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त एक ओर लिखते हैं, मानते हैं जो कला को कला के अर्थी स्वार्थनी करते कला को व्यर्थ हैं। उद्धरण चिन्ह बंद। तो दूसरी ओर महाकवि दिनकर जी का विचार है। उद्धरण चिन्ह, मैं यह मानता हूं कि वसंत का गुलाब और कवि के स्वप्न हम अपने में पूर्ण होते हैं, वे किसी को कुछ सिखाने के लिए नहीं होते। उद्धरण चिन्ह बंद। हमारे विचार से काव्य में कला का मूल लक्ष्य तो सौंदर्य ही होना चाहिए, किंतु उसमें अनैतिक तत्वों का ऐसा मिश्रण न हो तो वह समाज को क्षति पहुंचाने लगे। हाँ, यदि उसकी कलात्मकता को ठेस पहुंचाए बिना कुछ उपयोगी तत्वों का भी समावेश किया जा सके तो वह उसका विशेष गुण होगा। कला के क्षेत्र में सौंदर्य को नष्ट कर देने वाली अति नैतिकता और नैतिकता के ठोस पहुंचाने वाली सुंदरता, ये दोनों ही त्याज्य हैं। यदि एक मिष्ठान विक्रेता अपने मिष्ठान में ऐसी गुणकारी वस्तुएं मिलाता है जिनसे उसका स्वाद ही बिगड़ जाता है, तो उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए ऐसी वस्तुएं मिलाता है कि खाने वाले को तुरंत हैजा हो जाता है, तो दोनों ही स्थितियों में उसकी मिठाई हमें स्वीकार्य नहीं होगी। सौंदर्य के नाम पर कला को समाज विरोधी रूप देना ऐसा ही है जैसा स्वाद की वृद्धि के लिए हैजा फैलाने वाली मिठाई का निर्माण करना। वस्तुतः कला में सौंदर्य और नैतिकता का संतुलन एवं समन्वित रूप ही श्रेयकर है। कला जीवन साध्य है तथा जीवन कला साध्य। कला जीवन से दूर कोई एकांतमयी कोरी कल्पना नहीं और न जीवन कला से दूर कोई जड़ पदार्थ है। कला और जीवन दोनों समाज सापेक्ष है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उत्कृष्ट कला में दोनों का समन्वित रूप ही दृष्टिगोचर होता है। अतः कविंद्र रविंद्र के शब्दों में कहा जा सकता है, उद्धरण चिन्ह, सौंदर्य मूर्ति ही मंगल की पूर्ण मूर्ति है और मंगल मूर्ति ही सौंदर्य का पूर्ण स्वरूप है। उद्धरण चिन्ह बंद।